हरिशरणं 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 हरिशरणं
नारायण 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 राम 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 अमित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्त भजस्वनाम अनित्यम असुखम एवं अनित्य है इस बात से देरी नहीं करना चाहिए सही करना जाने कब सही चला जाए। असुखम सुख है नहीं सुख के वहम से बहुत समय बर्बाद हो जाता है ये सुख ले लें वो ले लें है नहीं इसमें है तो आज दिन क्या मिला कितना सुख मिला कितना सुख से क्या क्या पुष्टि होगी क्या संग्रह होगा क्या हासिल होगा है नहीं एवं प्राप्त ये शरीर है इसमें बहुत लाभ हो सकता सुदुर्लभ मेदम बहुत संभवान थे एवं प्राप्त इस शरीर को प्राप्त करके लाभ ले लो इस शरीर की महिमा देवताओं से बढ़ करके है ऐसी सही गरीब की महिमा नहीं है तो वो महिमा इस शरीर को लेकर के नहीं है शरीर में तो पांच है पश्चिम पावा गगन समीरा पंच रस अधम शरीरा अधम शरीर है तो इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी ये महिमा है वो विवेक शक्ति है उससे काम लो ठीक है उसे ये बहुत विदुषण शक्ति है ये हरेक में नहीं है देवताओं में नहीं है पशु पक्षियों में नहीं है नाग जीवों में नहीं है भूत प्रेत पिशाचों में नहीं है राक्षसों में असुरों में नहीं है वृक्षों में धूप में लताओं में घास में जलस्रों में आकाश मुडोरों में वो नहीं है ऐसी विलक्षण शक्ति इसमें एक विवेक शक्ति है इसको प्राप्त होकर के परमात्मा को प्राप्त करना है मेरी एक बात मन में आती है दो तीन दिन से कि उन बात को अपने अनुभव करें जैसे दो दिन से मैंने कहा भाई कुछ भी न करे चुप हो जाए शांत ऐसे करके देखें दिन में कई बार करके देखें तो ऐसे आपने किया होगा उसमें अड़चन आ गए वो पूछें और ये अगर शुरू कर दें आप तो बहुत विशेष लाभ की बात है सुनने की बातें बहुत है सीखने की बहुत सिखाने की सुनाने की बहुत बातें हैं परंतु अपना जीवन है वो कैसे सुधरे जीवन खुद में अपने परिवर्तन आना चाहिए ना जैसे अनुकूलता प्रतिकूलता आती है ये संसार है तो अनुकूलता का भी असर पड़ जाता है प्रतिकूलता का भी असर पड़ जाता है हमारे पर असर होता है तो असर हो जाने से हम अपनी स्थिति में ठीक नहीं रह सकते यंग है ना व्यथयंत पुरुषम पुरुषम जिसको ये मात्रा स्पर्श व्यथा नहीं पहुंचा सकती राजी हो गए तो आप व्यथित हो गए नाराज हो गए तो व्यथित हो गए अपनी स्थिति पर ठीक नहीं रहे वो व्यथा हो गई तो वो व्यथा जब तक होती रहे तब तक मनुष्य जीवन की सफलता नहीं है तो ये शक्ति आती है ये जो मैंने कहा भाई थोड़ा थोड़ी देर स्थिर होकर देखें कुछ भी चिंतन न करें छठे अध्याय के 25वें श्लोक में आत्म संस्तो मना कृत्वा न किंचिति भी चिंतयेत। एक परमात्मा परिपूर्ण है। आस्तिक लोग सब मानते हैं वो सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, सब जगह वो है। एक परमात्मा परिपूर्ण तो परमात्मा है, ऐसे सब जगह ऊपर नीचे बाहर भीतर नीचे सब परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसे मान करके और चुप हो जाए, कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे। ऐसी अवस्था में ये आग्रह नहीं कि वो चिंतन नहीं करना है, ये भी आग्रह नहीं चाहिए। चिंतन करना है ये भी आग्रह नहीं चाहिए, चिंतन नहीं करना ये भी आग्रह नहीं रखना है। स्वतः स्वाभाविक एक स्थिर करना, स्थिर होना है एक स्वतः स्वाभाविक। तो स्वभाव अवस्था है उसकी महिमा है। स्थिर होना भी क्रिया है और करना भी क्रिया है। तत्व की बात बताई कि नहीं मतस्य कृते नार्थ न कृते नहीं है कष्ट न, करने से कोई प्रयोजन नहीं है तो न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो न करने का भी आग्रह नहीं, करने का भी आग्रह नहीं, स्वतः शांति। जैसे नींद आती है ना, तो नींद हम लेते हैं तो नींद लेने में पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, उद्योग परिश्रम नहीं करना पड़ता है। परिश्रम दिन में होता है इधर, वो बात एक अलग है, परंतु नींद के लिए कोई तैयारी करे, उसके लिए कोई उद्योग करे, कोई पुरुषार्थ करने से बात नहीं है। सामान्य सुते हो जाए तो नींद आ जाती है। जैसे नींद स्वाभाविक है ऐसे स्वाभाविक कुछ नहीं करना एक तत्व है। नहीं करने का आग्रह रखना है ना, वो तो उद्योग है, वो परिश्रम है। करना परिश्रम है, ऐसे न करना भी एक परिश्रम है। उसे तत्व नहीं मिलता है, तत्व न करना करना दोनों के से विलक्षण है। नहीं होता से कृत्य न अर्थ न अकृत्य न, उसका प्रयोजन न करने से प्रयोजन है न करने से प्रयोजन है, नहीं किसी प्राणी के साथ कोई संबंध है। तो वो एक चीज है प्राप्त करना है। तो वैसे वो चीज समझ में आ गई होगा, नहीं तो खूब खूब समझ लें। चुप चुप स्वाभाविक चुपी, चुप का आग्रह नहीं चाहिए, नहीं करने का आग्रह नहीं, स्वतः स्वाभाविक। जैसे श्वास चलता है तो आप साफ चलता है श्वास, जैसे आँख खोलते हैं मिचते हैं आप साफ होता है, जैसे स्वाभाविक होता है स्वतः, ऐसे स्वतः जो कुछ भी नहीं करना है वो स्वतः वो होना चाहिए। उद्योग पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक क्रिया पूर्वक वो नहीं, स्वतः साथ। ऐसा होने पर मन में उथल पुथल होगी, मन में कई बातें आवेगी, तरह तरह बातें आवेगी। तो वो क्या है कि तंत्र जो पहले किया है, किए हुए का संस्कार है, उन संस्कार अनुसार कोई चीजें पैदा हो गई। तो उस वो जो हलचल पैदा हो, तरह तरह की स्मृति हो, याद आवे, उसकी भी परवाह नहीं करे, उपेक्षा उदासीन, उसमें उदासीन रहे अपना, कोई आग्रह नहीं होगा, आग्रह न रख करके, और अपना नहीं है वो। तो उसको हलचल को अपने में नहीं माने, अपने खुद में नहीं है वो, अपने में क्रिया नहीं है, करना न करना दोनों अपने में नहीं है, मन बुद्धि में है। उस मन बुद्धि में मन में वो संकल्प विकल्प होते हैं तो होते रहे, उसका आग्रह न लगे, न करने का आग्रह, न करने का आग्रह, आग्रह नहीं। और वो जो हो वो अपने में न माने, और ये मिट जाए ये भी आग्रह न रखे, और ये बड़ा रहे इसमें भी आग्रह नहीं, उसमें राजी और नाराजी दोनों न हुए। राजी और नाराजी ये बंधन है, खास खास बंधन चीज है। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न बस बागे तो यसे परिपंथी न हो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष है, तो संकल्प विकल्प है, मन में कोई बात याद आवे तो उसमें राग और द्वेष होगा। अच्छा मन मानोगे अथवा बुरा मानोगे, तो अच्छा और बुरा मानना यही बंधन है। अच्छा मानना भी बंधन है, बुरा मानना भी बंधन है। असम क्या है, वो बस है नहीं कुछ भी। अच्छा क्या है इसमें, अरे क्या बुरा है, न अच्छा है न बुरा है, प्रवाह है चल रहा है। ये दोनों शत्रु है इसके, तो इससे परिपंथ न हो, अच्छा बुरा भी न समझे, तटस्थ रहे। मन को लगाने में बहुत युक्तियां हैं, और मैंने बहुत सी बातें पढ़ी भी है इस विषय में। मैंने देखी है, पुस्तकों पढ़ी है, लेख अलग अलग पढ़े हैं, कौन क्या कहता है, किसने से मन लगाना चाहिए कैसे, तो इन बातों को बस करके जो मैं सीखी है, मेरे को अच्छी लगी है, वो बात आपको कहता हूँ। केंद्र अभ्यास करने के बाद में जो कुछ बात हाथ लगी वो कहता हूँ कि आप आग्रह मत रखो, मन लगाना है ये भी नहीं, नहीं लगाना है ये भी नहीं। मन को स्थिर करना है ये आग्रह नहीं, और मन को चंचल करना है चंचल करना ये भी आग्रह नहीं। शांति एकदम, तो जो संकल्प विकल्प हो उसमें न राग करे न द्वेष करे, शांत। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, ये अभी हमें अभी कुछ नहीं करना है। ये मैंने बात कही थी तो उसका उपयोग खराब हुआ। मेरे को तो कोई कहता है तो पता लग गया, मेरा लक्ष्य नहीं जाता इतना, मैं समझता ही नहीं कि इतना दुरुपयोग हो जाएगा। मेरे से आकर किसने कहा वो भी याद नहीं है कि हमें कुछ करना ही नहीं है। भाई मैंने ये करना नहीं है ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि जैसे नित्य नेम के लिए बैठे हैं, अब भजन स्मरण करते हैं, परमात्मा मन लगाते हैं, तो इस समय में कोई काम आवे तो भी अभी नहीं, अभी नहीं। अगर काम जाना है वह वकील से मिलना है, वैद्य से मिलना है, डॉक्टर के वहां जाना है, ये बात आवे ना, तो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो आधा घंटा घंटा जितने देर है तो अभी नहीं, ये पीछे करेंगे। ये मैंने कहा था, अब करना ही नहीं है, और सब कुछ करना है, परंतु अभी वर्तमान में अभी नहीं, ये सोचते अभी नहीं, अभी काम नहीं है, अभी नित्यनेम करेंगे, भजन पाठ सब करेंगे, अभी अभी नहीं, ऐसा नहीं तो वो बात आती रहेगी, उससे मिलना है, उससे मिलना है, उससे मिलना है, क्या अभी नहीं, आधा घंटा घंटा जो बैठे हैं अभी नहीं, अभी तो केवल परमात्मा मन लगाना, अभी तो बस इतना ही। ऐसे हो जाए शांत हो जाए, अब कुछ आवे न आवे मन में परवाही मत करो उसकी। उदासीन उदासीन गुणे योन विचारी, उदासीन वासीन, उदासीन तभी बैठा रहे, तो ये बात कुछ हाथ लगी है कि नहीं, किसी की आई हो तो बताओ, बाधा आई हो तो पूछो, मैं पूछो बात। थोड़ा दिन रहा है भी सत्संग करने का, अब हम तो चल देंगे, आप लोग फिर कब दर्शन होंगे भगवान जाने, पता है नहीं, कुछ भरोसा नहीं। तो ये बात एक ले रहे है, एक चीज हासिल कर रहे हैं तो बढ़िया चीज है। जैसे धन कमा लेता है तो मनुष्य हाथ लग जाता है, इतना धन हाथ लग गया। इस तरह से सत्संग के द्वारा ये एक चीज ले लेना बहुत बड़े लाभ की बात है। मन लगाना इतनी दामी नहीं है, एक चीज में मन लगा देना बड़ा कठिन मन होता है और लाभ उतना नहीं है जितना इसमें लाभ है। मन लगाने से ऊंची बात है ये। शंका हो तो बोलो आप।
प्रसंग में बोलिए, आप इस प्रसंग में बोलिए।
इसी प्रसंग और बात नहीं छोड़ो कृपा ना, तो और बिल्कुल मत छोड़ो भाई, और बिल्कुल मत छोड़ो। ये एक ही बात ठीक निर्णय हो जाए इस पर विचार रखो, और कुछ मत छोड़ो।
कहते हैं कुछ नहीं चिंतन करने में, ईश्वर चिंतन तो जारी रहे।
ईश्वर चिंतन करो, मैं नहीं कहता हूँ ईश्वर चिंतन करो, मैं ईश्वर चिंतन नहीं कहता हूँ। आप ईश्वर चिंतन करो, करो जब करो, कीर्तन करो, मर्जी आज करो। मैं तो कह रहा हूँ ईश्वर भी चिंतन नहीं करना है, कुछ भी चिंतन नहीं करना, ना ईश्वर करना है, ना संसार का करना है, ना कुटुंब का करना है, ना रुपयों का करना है, किसी का कुछ भी चिंतन करना ही नहीं है हमें। मैं देखो कह चुका हूं कि मैंने इस विषय में कुछ किया है, अभ्यास किया है, पुस्तकें पढ़ी है, उनके अनुसार चेष्टा की है, वो करने से मेरे को जो सार चीज मिली है वो मैं कहता हूं। आप इस चिंतन करो, मैं विरोधी नहीं हूं, नाम जप करो, कीर्तन करो, कुछ भी करो, मैं अभी मैं कह रहा हूं उसमें तो कुछ भी चिंतन न करें, कुछ भी की चिंता न करें, ना ईश्वर का करें, ना संसार का करें, ना जड़ का करें, ना चेतन का करें, ना आत्मा का करें, ना अनात्मा का करें, ना प्रकृति का करें, ना ब्रह्म का करें, कुछ भी चिंता न करें। बहुत ऊंची चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है, बहुत ही उत्तम है, कुछ चिंतन न करे। जो अब चिंतन होता है उस होने में तीन बात मैंने कही है। एक तो अपने में होता है, मेरे होता है, ये न माने, अपने में नहीं होता है, ये मन बुद्धि में होता है, ये अपने में है चिंतन, ये न माने। एक तो एक वो चिंतन है जिसमें राजी न हुए, एक नाराज न हुए, मनो अच्छा हुआ ये मंदा हुआ, ये भी ना करें। अपना है ही नहीं, क्या सर क्या मंदा, अपना है ही नहीं, अपने कोई संबंध ही नहीं है। इतनी बात मेरा विश्वास बेशक कर रहे हैं, मैं धोखा नहीं देता हूं, साफ कहता हूं, बहुत बड़े लाभ की बात है, ये मामूली लाभ की बात नहीं है, बहुत बड़े लाभ की बात है। तो एक बात कहता हूं कि संसार है ये हरदम बदलता है, ये बात आपके हमारे सबके अनुभव की बात है, इसमें कोई शंका हो तो बोल दो, इसमें शंका नहीं है ना, हरदम बदलता है संसार, सच्ची बात है। शरीर है, संसार है, सब बदलता है, केवल बदलने ही बदलने के सिवाय कुछ नहीं है। यहां निरंतर बदलने में भी हम राग कर लेते हैं, अच्छा और मंदा कर लेते हैं, तो हम बंध जाते हैं, यह बर्तन है नहीं, उसके साथ ही संबंध जोड़ने से हम बंध जाते हैं। मन वो संबंध सिद्ध हो जाता है, पाप और पुण्य बढ़ जाते हैं, और अनेक जन्म हो जाते हैं। नहीं होते हुए चलते हुए परिवर्तन में भी मन लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे जन्म मरण हो जाता है। अब इसके साथ न होते हुए साथ में संबंध जोड़ ले तो हमारे जन्म मरण होता है। एक तत्व परिपूर्ण है, सब जगह मौजूद, सब जितने दार्शनिक है सब मानते हैं कि एक तत्व है। मैं कहूं वो तत्व ऐसे मानकर आप चुप हो जावे, उसमें स्थित होने से स्थिति नहीं होगी और न स्थिति है न गति है, कुछ भी न कर चुप हो जाए तो उसमें स्थिति होगी आपकी। नाशवान में भी जोड़ने से जन्म मरण होते हैं, कई कर्म बढ़ जाए, अविनाशी तत्व स्वतः सिद्ध है, उसके साथ आपका संबंध होगा तो कितनी ऊंची होगी जगह, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई पार नहीं है, ऐसी असीम तत्व है वो, ऐसे असीम तत्व की बात हो। वो तत्व आप पकड़ में आ जाए आपके, ये मैं चाहता हूं। नहीं होता हुआ भी संसार में मन लगने से बंधन हो गया, जो नित्य निरंतर सदा है, जो का त्यों मौजूद है, उसमें आपकी खुद की स्थिति हो जाए तो कितना लाभ होगा। वो स्थिति करने से स्थिति नहीं होगी, ना चिंतन होगी, ना स्थिति करने से होगी, ना रुकने से होगी, नहीं होगी। योग वृत्ति निरोध, योग दर्शन छह दर्शनों में एक योग दर्शन है, पांच दर्शनों के साथ छठा दर्शन है एक, उसमें चित्त वृत्ति के निरोध की बात बताई, चित्त की वृत्ति निरोधी, निरोध हो जाने से तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम यथा अथातो अथातो योगानुशासनम। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इति सूत्र है दर्शन का आरंभ का ही। तो दृष्टा में स्वरूप में स्थिति होती है कब, के चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर। फल में गीता ने वो बात बताई है, जो निरोध होने पर जो स्थिति होती है वो स्थिति सीधी बताई है गीता ने। गीता का योग पातंजलि योग दर्शन से बहुत विलक्षण है। आपके शंका हो तो कोई पूछने का विवेचन कर मैं बता दूंगा, बहुत विलक्षण योग है। उस योग की बात आपको मैंने कही है,
निद्रा आ जाती है।
निद्रा आ जाती है, वो कल बात कही थी मैंने, निद्रा आ जाए तो उस समय में इस अभ्यास को न करें, उस समय में नाम जप करो, कीर्तन करो और खड़े होकर थोड़ा टहल लो। अगर इसी साधन को करना हो तो थोड़ा खड़ा हो करके नाम सब करते हुए घूम लो, दो चार दिन चक्कर लगा फिर बैठ जाओ, तो समझ नींद नहीं आवेगी। ऐसा टहलने से चित्त की वृत्तियां बहुत शांत होती है।
वो परम तत्व जिसकी आप बात कह रहे हैं, अपना आपा एक ही बात है, परम तत्व अपना आपा एक ही है, अपने आपे का अपनी बुद्धि और मन से भिन्न अनुभव जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये बात बनेगी कैसे।
अच्छा, वो अलग कैसे होगा, क्या उपाय है?
उपाय ये है कि पहले तो योग के मार्ग से साक्षात्कार घटे।
तो आप पहले योग कीजिए, मेरी बात पहले मत कीजिए, पहले योग का अभ्यास करो।
तो मेरा मतलब ये हुआ कि जो आप अपनी बात कह रहे हैं गीता वाली, उसका सीधा मार्ग बिना योग किए हो जाएगा?
बिल्कुल, एकदम बिल्कुल ठोस बात है, पक्की एकदम। आपके करना हो तो आप वो करके कीजिए, आप पहले मत कीजिए। मैं धोखा नहीं देता हूं आपको, विश्वासघात नहीं करता हूं। अब वह किए बिना पैसे नहीं होगे, वो मैं सिखाऊ नहीं, पहले वाली बात सिखा दू, रीता रह जाओ दोनों से, वो तो करते नहीं, वो होता नहीं। जयराम जी, ये धोखा नहीं दे रहा हूं मैं इन बातों को जानता हूं। अभिमान की बात है, आप कही है मैंने कि मैंने इन बातों को पढ़ा है, सुना है, समझा है और जानकर, मेरी दृष्टि में जानकर उसे पूछा है, प्रश्नोत्तर किए है, इसमें मैंने किया इस वास्ते ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा करने से, ऐसा नहीं है, सीधा ही हो जाता है। मेरी एक धुन है, आप कृपा करके सुने, मैं अभिमान की नहीं कहता हूँ, पर अभिमान की बात है। मैं अभिमान के लिए नहीं कहता हूँ, अभिमान पूर्वक नहीं कहता हूँ, आप लोगों से क्षमा मांग करके नम्रता से कहता हूँ कि ये बातें जितनी होने से होता है ठीक बात है, परंतु मेरे एक धुन है क्या कि जल्दी से जल्दी और हरे का कल्याण कैसे हो, ये एक मेरी धुन है। स्वतः आप लोगों ने संत महात्माओं के कहने से उनके उपदेश से मेरी एक गति हुई है। मैंने ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम में व्याख्यान में के 4-5 वर्ष हो गया होगा, कितना वर्ष हुआ भाई याद नहीं है, मैं
1 वर्ष हो गया तो ये कहीं
मैंने ये बात कही थी कि ये शरीर अगर मेरा रहा 4-5 वर्ष रहा, 5-7 वर्ष रह गया तो मैं परमात्मा तत्व की प्राप्ति बहुत सुगम बता दूंगा। ऐसे मैंने सभा में कह दी बात कि तत्व की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए, तो ये 5-7 वर्ष रह गया तो मैं बहुत सुगम बता दूंगा। अब भी मेरी वही धुन है, ये कैसे हरेक को तत्व की प्राप्ति कैसे हो, जल्दी से जल्दी सुगम से सुगम कैसे प्राप्ति हो, ऐसी एक मेरी धुन गति हो गई है। पुस्तकों में देखता हूँ, संतों से पूछता हूँ, प्रश्नोत्तर करता हूँ, जहाँ मेरे रब है वहाँ विचार करता हूँ, इसका स्वयं भी सोचता हूँ। इस वजह से मैंने कह दिया कि 5-7 वर्ष शरीर रह गया तो मैं बहुत सुगमता से बता दूंगा, तो वो मेरी धुन चल रही है अभी। तो मैं ये नहीं बताऊं, आपने कहा उनसे पहले कैसे हो जाएगा, तो नहीं होगा तो आप कीजिए, मैं मना नहीं करता हूं, मैं किसी के मत का खंडन नहीं करता हूं। मेरी दृष्टि से वो बात बताता हूं जो सीधे ही ठेठ पहुंच जाए आप, जैसे सीढ़ियों से तो पहुंचता ही है, परंतु विहंगम मार्ग है शास्त्र में, विहंगम मार्ग मान आकाश का मार्ग, तो आकाश मार्ग में जो पक्षी का मार्ग है वो बहुत जल्दी हो जाता है। वहां कबीर साहब वाणी में एक बात आती है कि रस्ते रस्ते दूर है, दूर बहुत है, उजड़ पेड़ा पेड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधु उपराड़े नेड़ी, मारवाड़ी शब्द उपराड़े मानो अच्छा भी तैयारी, अब इस समय वह घर में जब किस देर लग रहे उपराड़ियों के हो गया, लड़ी पड़े एकदम बिल्कुल एक दीवार है भी इसमें ऊपर घात दिया लिया सट हो गया। अब यहाँ से जावे कितना, इस मकान से निकलेंगे फिर कितनी गली में होकर जाएंगे फिर वहां पहुंचेंगे, ऐसे रास्ते रास्ते दूर बहुत पड़ेगा, ऐसे बिना रास्ते जा सकते नहीं, उधर पेड़ा पेड़ी ऊंचा नहीं है चूट है नीचे ऊंचा है, रास्ते रास्ते दूर बहुत है, उजड़ पेड़ा पेड़ी, कहत कबीर सुनो भाई सो तो ऊपर रहे नेड़ी, बहुत नजदीक पड़ता है जो, तो मेरी धुन है वो कि ऊपर जल्दी से जल्दी उस तत्व को प्राप्त कर लें। हर एक आदमी पापी से पापी, दुराशाई से दुराशाई, मूर्ख से मूर्ख, अपट से अपट, केवल चाहना इसकी हो कि वह तत्व मैं जानना चाहता हूँ, ये एक योग्यता मैं मानता हूँ और की जरूरत नहीं है, ये जितनी जोरदार होगी जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो सुन लो पर पहला नहीं होगा।
स्वामी जी एक प्रार्थना है कि आपके सानिध्य में ये थोड़ा सा अभ्यास हो जाए तो बहुत बढ़िया है, 2-4 मिनट के लिए।
ये तो आप लोग ही करें महाराज जी, क्या महाराज जी तो बात बता दीजिए
क्या कहें,
ये वो कहते हैं कि आपके सानिध्य में हम लोग यह अभ्यास करें है? आपके सानिध्य में हम लोग इस चीज का अभ्यास करें,
मेरी सन्नति में पूछ, मेरे से पूछो, पूछने में मेरे तो इतना उत्साह है, अत्युक्ति नहीं करता हूँ, परंतु अत्युक्ति जो ही है, रात में पूछ लो, दिन में पूछ लो, सुबह पूछ लो, शाम को पूछ लो, भोजन करता हूँ तो भोजन करने में देरी लगेगी, नित्यनम करता हूँ उसमें देरी लगेगी, उसके बाद पट पूछ लो, कभी पूछ लो। आज से 55 वर्ष पहले की बात है, 50-60 वर्ष की, उसे मैंने कहा कि आपको पूछना हो तो नींद में जगह पूछ लो, नींद आई हुई है उसमें जगह कर मेरे पूछ लो, मेरे बाधा नहीं आती। अरे एक संत से पूछा करते थे, वो वो रात्रि में आ जाते एकदम। मैंने स्वामी जी मेरे दोस्त मेरी बात पूछे, वहां पूछो ऐसे काम पड़ा है, वो एक ही आया और कोई ज्यादा आया नहीं। मैंने तो 50-60 वर्ष पहले कह दी थी कि मेरे को नींद उठा लो, मेरी एक बड़ी भगवानी कृपा समझो, आदत समझो, प्रकृति समझो, ऐसी है। आपने पूछ लिया, आप पूछ गए, पीछे सो गए, नींद आ गई पट, कहने भी नहीं उछुड़ गया, अब नींद नहीं आती, नींद नहीं आई, ये नहीं होते मेरे चटा आ गई, नींद सो गई, नींद आ गई, जब चाहो जब नींद ले लो। क्या कहे
समझे नहीं,
और वो दूसरी बात
है नशा सा आता है,
नशा तो कोई हर्ज नहीं है। क्या आता है नशा, वो ऐसी बात हो ज्यादा आपको तो आप 2-3 जना मिल करके पूछ लो, एक समय कर लो, पास में आकर पूछो मेरे से।
चुप रहने में कई बातें दिमाग में आती
है, ऐसे विचार हो तो एक समय करो, उस समय मैं पूछो। परंतु ये फालतू बात है मत छेड़ो, हरेक प्रश्न पूछो, हरेक पूछा वो न मत छेड़ो। एक ही बात अभी कहता हूं मैं, कुछ भी चिंतन न करे, इस एक बात को आप पकड़ लो, बहुत लाभ होगा मेरी समझ में, बहुत लाभ की बात। मैं कहूँ जितनी देर हो सके, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार कर लो दिन में, 8 बार जितना आप कर सको, 2-4-5 मिनट की बात फिर कर लिया, 5-10 मिनट का फिर कर लिया, 1 मिनट की बात कर लिया। नारायण 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 नारायण,
बैठना कैसे होता है,
ना बैठने की जरूरत नहीं, कभी करो, भोजन करते कर लो, चलते फिरते कर लो, बात करते कर लो, काम धंधा करते कर लो, दुकान पर बैठे हो 5 मिनट, 5-7-10 सेकंड करके देखो, आप इस अटकल को पकड़ लिया कि नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं है, अगर पकड़ लिया करके देखो। बहुत नारायण नारायण नारायण।
हरि शरणम् हरे 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 शरणम्
नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण राम 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 नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि चुप होकर के बैठने से जो मन में अशुद्ध संकल्प आवे तो वे भी नष्ट हो जाएंगे, सब सब नष्ट। उपेक्षा रखो, ना उसका आदर करो, ना निरादर करो, ना ये मिट जाए ये मानो, ना ये आ जाए रहो रहे ऐसा मानो, उसकी कोई मतलब नहीं है, अपने आप सा मिट जाएगा। ये एक बहुत जबरदस्त युक्ति है, आप माने न माने वो तो आपकी मर्जी है, परंतु मन बस करने की बहुत सी पुस्तकें मैंने देखी, लेख देखे, इन पर बातें सुनी, प्रश्नोत्तर हुआ है, परंतु ये उपेक्षा करना जितना बढ़िया चीज है उतना विरोध करना बढ़िया नहीं है। मन को लगाना और विरोध करना, ये नहीं आवे, ये नहीं आवे, ये नहीं आवे ऐसा, और ये आ जाए, इसमें मन लग जाए, इसमें मन लग जाए, ये इन दो की अपेक्षा उदासीन होना ये बढ़िया है, ना अच्छा समझे ना बुरा समझे, ना ये आ जाए ये इस तरह रखे, ना ये ना आवे ऐसा नहीं दे रखे, ना राग रखे ना द्वेष करे, दोनों ही न करे, विरोध ही न करे, राग भी न करे, अनुमोदन भी न करे, कैसा ही हो जाए। शंकर बोलते हैं उनका आप अशुद्ध एक कहते हो, हम कहते हैं एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है, एक आवश्यक होता है, एक अनावश्यक होते हैं, चार तरह के होते हैं, पर उनको जरूरत नहीं होगी, उदासीन रहना है सबसे बढ़िया श्रेष्ठ है। तो अशुद्ध शंकर नष्ट हो जाएंगे, उनसे राग द्वेष करने से संबंध जुड़ता है, राग से भी संबंध जुड़ता है, द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। भगवान के साथ में राग किया उनका भी कल्याण हुआ, द्वेष किया उनका भी कल्याण हुआ, अभी दूसरों का नहीं हुआ, तो क्या वो संबंध जुड़ता है। ऐसे आप संसार को अच्छा मांगो तो संबंध जुड़ेगा, बुरा मानो तो संबंध जुड़ेगा, संकल्प को अच्छा मांगो मानोगे तो संबंध जुड़ेगा, बुरा मानो तो संबंध जुड़ेगा। अच्छा बुरा उस है, हवा चलती है, वृक्ष हिल गया, कपड़ा सूखता हिल गया तो हिल गया, और क्या हो गया, यूँ हिल गया तो गया, और क्या फर्क पड़ा उसमें। ऐसे मन में कोई संगुल आ गया नहीं आ गया तो क्या है, उपेक्षा उदासीन तटस्थ। वास्तव में संसार से तटस्थ आप है, आप तटस्थ होंगे साक्षी होंगे, अगर ये साक्षी तेरे मन में संकल्प आवे उन्हें ये साक्षी होकर देखें या नहीं, बिल्कुल मत देखो। अगर शांति चाहते हो तो साक्षी बनो मत, ये व्यक्तित्व नष्ट नहीं होगा, साक्षी बनने से व्यक्तित्व नष्ट नहीं होगा, राग और द्वेष से व्यक्तित्व बना रहेगा, साक्षी हो जाना ठीक नहीं है। साक्षी क्या, हम है नहीं साक्षी, होता रहे हमें मतलब नहीं है उनसे, किसकी साक्षी होगा। उदासीन उदासीन हो गुणे जीवन विचार लेते, गुणा वर्तन देते हो योग दृष्टि नहीं देते। साधकों के लिए और सिद्धों के लिए और भगवान के लिए गीता में ऐसे समझाए, उदासीन हो गया सब तथा, उदासीन हो गया सब तथा, उदासीन वासीन भगवान स्वयं कहते हैं असंतेष कर, उदासीन वासीनम, उदासीन वासीन हो गुणे जीवन मुक्ति गुणातीत नहीं कहते, सब कुछ उदासीन तटस्थ साक्षी नहीं तटस्थ। हमें मतलब नहीं है, अच्छे से मतलब है, गुरु मतलब है। मैंने श्लोक कहा था, नहीं वत्स्य कृतेन अर्थ न अकृते नहीं अकर्षण, न करने से कोई मतलब है और न करने से कोई मतलब है, करने न करने से दोनों से मतलब नहीं है। नहीं वत्स्य कृतेन अर्थ न अकृते नहीं अकर्षण, न साय सर्वभूत कर्षण आश्रय, तो करने न करने से दोनों से कोई मतलब नहीं, ना राग करना द्वेष करना, ना हर्ष होना, ना प्रश्न होना ही, ऐसे तटस्थ हो जाए। तटस्थ होना है ये भी कहना कहते हैं, वास्तव में होना नहीं है, तटस्थता है स्वतः स्वाभाविक। गंगा जी का जल बह रहा है, उसको भीतर लगा कर जल को धक्का लगावे कि थोड़ा जल को बहा दे, तो कहते मूर्ख है, क्या आप ही बह रहा है, हाथ लगा के रोक देते हैं, सब पानी को रोक देते हैं, अभी मूर्ख होता है, ना रुकेगा और ना तेरे से बहनेगा, तेरा मतलब कर ले बहने दे, है जी रहने दे, तुम्हारे स्नान सोच करना भी कर दो चलो, क्यों तकलीफ देखे, ऐसे संसार बह रहा है, इस संसार को हम रोक दे, में हमारे इतना काम हम कर रहे हैं, इतना निषेध कर दे, में इनको हटा दे, में इतना ले ले, में कोई तकलीफ देख रहा, कुछ नहीं होने का, इसे संसार बह रहा है, कोई दखल नहीं दे इसमें, अपने भगवान से कहते एक परमात्मा है, आत्मसंसमन एक है परमात्मा, परिपूर्ण है, उन है से मतलब है, वर्णी से मतलब नहीं है, ये आवे तो क्या, न आवे तो क्या, ठीक है तो क्या, बेटी है तो क्या, अनुकूलता है तो क्या, प्रतिकूलता तो क्या, इसे मतलब क्या है इसने बड़ा, अपने कोई मतलब नहीं है।
यही
उन्मुनी स्थिति
आ जाएगी, उन्मुनी मुद्रा उसी है, उन्मुनी मुद्रा बड़ी बढ़िया है, उन्मनी दृष्टि होती है, उन्मनी मुद्रा होती है, उन्मनी स्थिति होती है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी।
कहते हैं शवासन में और इसमें क्या फर्क हुआ?
कोई फर्क नहीं, शवासन असली होता है, वो वास्तव में ऐसे ही है, संकल्प रहती है, पर शवासन कर लेते लंबा पड़े केवल इतने से नहीं होता है, ठीक भीतर से बचने से ये एक होनी चाहिए, हो जाएगा से। नारायण 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 ये चुप होना, कुछ न चिंतन करना, ये तो शब्द है नहीं, इस वास्ते हम शब्द का प्रयोग करें, क्या करें? उस तत्व को बताने वाले शब्द नहीं है संसार में, है ही नहीं शब्द, शब्द की वहां गति नहीं है, इस वास्ते ऐसे कहते हैं। चुप होना नहीं है, चुप होना भी क्रिया है और चिंतन करना भी क्रिया है, दोनों क्रिया है। साधक संजय ने विषय आया है सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति कर्मणि अकर्मीय पश्यति अकर्मणि च कर्मीय। तीनों है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों दोनों के लिए, सबके लिए। अपने स्वतः सिद्ध, जैसे दृष्टांत दिया मैंने कि नींद लेते हो तो क्या पुरुषार्थ करते हो, बताओ क्या उद्योग करते हो, किस वृत्ति को लाते हो, किस वृत्ति को हटाते हो, किसके साक्षी बनते हो, कौन से अशुद्ध संकल्पों का विचार करते हो, शुद्ध का विचार करते हो, वो विचार ही नहीं करना ही नहीं है, अब नींद आ जाएगी आपसे आप ही। ऐसे नींद जैसे आ जाए, ऐसे आप से आप शांत हो जाए, वो चीज है, उसमें उद्योग नहीं है, उद्योग से नींद नहीं आती है, परिश्रम करने से थकावट होती है, थकावट का परिश्रम वापिस है, इसका विश्राम होता है, आप से आप नींद आती है, पर नींद के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, बताओ कोई करो तो संकल्प बताओ।
चुप साधन में शरीर का भान रहता है क्या?
ये आप निगाह ही मत रखो, शरीर का भान है कि नहीं मान है, तो शरीर का भान हो ही जाएगा, साधन सिद्ध नहीं होगा। शरीर का भान रहता है नहीं रहता, नहीं करो ना तो ये वृत्ति होगी नहीं, मैं कहता हूँ वो साधन होगा ही नहीं। क्या होता है क्या नहीं होता है निगाह रखोगे तो कुछ नहीं होने का है जो ही रहोगे, अभी हो जैसे रहोगे, ख्याल ही मत करो कुछ भी, सही का भाग रहता है कि नहीं रहता है, होश रहता है कि नहीं रहता है, बेहोश हो जाते हैं कैसा हो जाता है, मूर्छा हो जाती है, नींद आ जाती है, नींद आ तो ख्याल रखो उसे, वो फिर छोड़ दो, सिद्ध नहीं होगा नींद आ गया तो, नींद में समय बर्बाद होता है, इस बात खड़े हो जाओ, कीर्तन करो, नाम जप करो, ऐसे करो।
कुछ नहीं हुआ ऐसे पूछते हैं, पता हम तो तटस्थ बैठे हैं, हमारे सामने जीव हिंसा हो रही है तो हम क्या करें, हम तो तटस्थ बैठे हैं चुपचाप और सामने जीव हिंसा हो रही है तो उसमें क्या करें।
फालतू बात है ये, विषय ही ठीक नहीं है, बोला राम राम के बाजार गयो तब उस राजी को से एक भूंजान खावा ऐसा है मतलब जीवन से रोको मत होने दो मना कर दो क्यों करता है जीवन से रोको ये विषय नहीं है। थोड़ी सी एक बात ये कहता हूं कि जो विषय चलता हो उस विषय में प्रविष्ट होकर फिर पूछो उठपटांग मत पूछो। इनमें बड़ी बेइज्जती होती है ना मन का फजीती होती है ना। नारायण 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 सनई सनई ऊपर रमेत बुद्धिया धृति गृहीतया आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचन विचिन्तयेत। ये ध्यान लगाना नहीं है स्वतः लग जाएगा ध्यान स्वतः और स्वतः ध्यान होगा वो असली होगा और किया हुआ ध्यान नकली होगा। कितने ही परिश्रम करो नकली होगा समाधि भी नकली होगा ये असली होगी और इसमें ख्याल नहीं है मेरी बात पर विश्वास नहीं स्वयं करके देखते नहीं अब क्या करें। दो ही उपाय है स्वयं चाहे करके देख लो और चाहे भैया मेरी बात मान लो उचित समय मानो जबरदस्त नहीं है बिल्कुल। एक सच्चिदानंद परमात्मा है अंतिम साधन होगा ये जितने आप साधन करो भक्ति का योग का ज्ञान का हलय योग हठ योग राजयोग मंत्र योग अधस्त योग जितने योग उन संपूर्ण योगों का अंतिम साधन ये होगा। जैसे आप कितने ही जोड़ो रो काम करो करो अंत में बैठोगे आराम करोगे कि नहीं दिन भर काम करो रात भर काम करो दिनों तक काम करो खड़प करके फिर आराम करोगे कि नहीं आराम के बिना दूसरी शक्ति आवेगी नहीं आप में। वो आराम है तो एक तो जड़ में आराम होता है चेतन में होता है इसमें दो फर्क हुआ। जड़ता में आराम तो होता है पर जड़ता से विकास नहीं होता ताजगी तो आएगी शरीर में ताजगी आ जाएगी इंद्रियों में ताजगी आ जाएगी मन बुद्धि इंद्रियों में ताजापन आ जाएगा नयापन आ जाएगा परंतु लाभ नहीं होगा इतना लाभ होगा ताजगी आ जाएगी। और जो जागृत में सुषुप्ति हो जाएगी जागृत में सुषुप्ति जागृत में जागृत होती है जागृत में स्वप्न होता है जागृत में सुषुप्ति होती है तीनों अवस्था होती है जागृत में। जागृत में जागृत है जिसे हम आप व्यवहार करते हैं लेन देन करते हैं व्यापार ये है जागृत में जागृत। और जागृत में बैठे हैं और ऐसी उठपटांग बातें याद आ गई जिनका कोई संबंध नहीं है ऐसी बातें आ गई मनोरज वहां पर गैर वहां बेकार वो शहर है यह है जागृत का स्वप्न। जागृत का स्वप्न है ये और जागृत में है बैठे हैं तो ना तो बाहर से काम धंधा है ना कोई भूलना है स्वतः शांत हो गए कुछ भी याद नहीं है यह है जागृत की सुषुप्ति। मैं जागृत की सुषुप्ति कहता हूं जागृत की सुषुप्ति है ये जागृत अवस्था में सुषुप्ति। सुषुप्ति में इसमें फर्क है सुषुप्ति में बेहोश हो जाता है आदमी वृत्तियां अविद्या में लीन होती है इसमें वृत्तियों का संबंध विच्छेद होता है। ये निरोध समाधि है ना चित्त वृत्ति निरोध निरोध में संबंध विच्छेद नहीं होता है वृत्तियों का इसमें वृत्तियों का संबंध विच्छेद होता है। सबसे ऊंची बात है आपके आवे करो नहीं आवे मत करो आपकी मर्जी है मेरे से कोई सम्मति पूछे तो समाधि से भी ऊंची बात है ये।
कहते हैं ऐसा चुप साधन है किसी भी समय कर सकते हैं
किसी समय
कोई समय निर्धारित
बिल्कुल निर्धारित नहीं है बढ़िया समय है नींद उठे तब, जब नींद खुल जाए उसी बिछौने पर बैठ करके करो, ये बढ़िया समय है, इसके लिए समय जरूर। क्या कह रहे हैं,
शंका क्या है?
चुप होते समय, ये चुप होते समय जो आप अभी आज्ञा करते हैं सिद्धांत की बातें, वो कुछ याद आया करते
हैं। वो आप चुप रहने की बात कहते हैं, ये जो आप बात कहते हैं उस समय याद आती है, जिस समय चुप रहते हैं, महाराज जी ने ऐसा कहा है, ऐसे चुप रहना है, ऐसे करना है।
हाँ, तो याद आ जाए, उसकी परवाह मत करो, याद मत करो उसको भी, याद आए तो उपेक्षा करो, उदासीन हो जाओ उस बात से, ना राग करो ना द्वेष करो, ना अच्छा समझो ना भला समझो ना बुरा समझो। क्या
कोई बात
नहीं, उस मत समझो उसमें।
साधना में और मौन व्रत में कोई फर्क है क्या?
बड़ा भारी फर्क है। मौन व्रत में तो चुप होना पड़ता है। इस बात में मैंने कल परसों पूछा और आज भी पूछता हूँ, आपकी ये अकल में आई कि नहीं आई? कल मैंने प्रश्न किया था, मेरी बात आपके कब्जे में आई कि नहीं, समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो क्या कमी रही वो पूछो। मेरी समझ में पकड़ नहीं पाया अभी, और चुप आया उनको क्या पता, वो बोलते हैं उनकी मालूम होते, पकड़ नहीं पाए, उनको स्पर्श नहीं हुआ। समय से उपरते उपरती है ना, जैसे रस्ते चलते हैं, अब कहीं दिख गए, कहीं पत्थर पड़े दिख गए, कहीं वृक्ष खड़े दिख गए, कोई गाय खड़ी दिख गई चल दिए, वो याद नहीं रहती कितनी देख चीज है, याद रहती है क्या? देखोगे तो याद रहेगी, दी देखो दीख दे दीख दे दीख दे। आप याद आ जाए न आ जाए इसकी बेपरवाह रखो, बेपरवाह रहो, सबन से बेपरवाह देखो, निरपक्ष होए तमाशा, निरपक्ष।
आप पूछ रहे हैं साधु संतों में तो कोई काम है नहीं, वो तो इस अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन हम घर गृहस्थ वाले हैं तो उनको ऐसे चुप रह करके कैसे बैठे रहेंगे?
ये तो तब करो, मैं कहूँ आठ ही पर चुप रहो तब ये प्रश्न हो सकता है आपका, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं है। अभी त्याग चार दिनों से बात चलती है, कभी नहीं कहा है कि तुम काम धंधा मत करो चुप हो जाओ। बोले भाई इतने आदमी गवाह दो हमारी बात ठीक है कि ठीक है, कभी मैंने कहा है कि तुम काम मत करो?
आपने जो है काम करते हुए करो,
मैं तो काम करते हुए कहा है कि काम करते करते बीच में चुप शांत और पांच सात सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड इतना ही बोला, मैं ज्यादा नहीं कहा, मैंने आधा घंटा कर, आधा मिनट कर लो बहुत बढ़िया, 5-7 सेकंड। आप काम करते हो रोटी खाते हो, आप काम करते हो पानी पीते हो, आप आराम करते हो बात करते हो, आप काम करते हो निरर्थक देखते हो, आठ पहर का अगर फिर विचार करो, आप सबसे मैं एक प्रार्थना करता हूँ, बड़े जोर से कहता हूँ, आठ पहर आप मिनटों का लगाओ ध्यान, जिसमें काम धंधे की अपेक्षा फालतू समय ज्यादा जाएगा, 24 घंटा में 12 घंटा 13 घंटा चला जाएगा फालतू में, काम में तो 10-11 घंटे जाएगा, हिसाब कर देखो तो बता देगा। कहते हो बाबा जी जो जाते हैं हम कृष्ण कैसे करें, फालतू बात, बिल्कुल फालतू बात। मैं कहूँ जो हिसाब रखो, मिनट मिनट का हिसाब रखो, तो काम धंधे करने में समय कितना लगता है, अरे फालतू समय कितना जाता है, बातों में समय कितना जाता है, इधर देखने में कितना जाता है, सिनेमा में कितना जाता है, परचर्चा में कितना जाता है, हिसाब करो तो पता लगे। आधे से ज्यादा समय बर्बाद होता है, आधे से थोड़ा बहुत होता है। पढ़ाई करने वालों का पढ़ाई करते हैं बरसों तक, और वो समय बहुत थोड़ा लगा पढ़ाई में, फालतू समय ज्यादा जाता है। जो कोई साधन करता है फालतू समय नहीं जाने दे, बड़ा भारी काम है ये, बहुत बड़ा लाभ होगा। फालतू समय बहुत जाता है, निगरे को तो पता लगेगा नहीं तो पता नहीं लगेगा। लिख लो एक एक मिनट का, लिखते जाओ 8 बार लिख करके देखो, पता लगेगा आपको। फालतू बहुत समय जाता है, ना कोई स्वार्थ है, ना परमार्थ है, ना कोई संसार का काम है, कुछ नहीं, फालतू जैसे कुछ पैदा नहीं होती। तो सावधान रहो, फालतू मत जाने दो समय, इतना याद रखो, फिर सिद्ध होगा ये। नारायण 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 नारायण।